सिद्धेज ॐ नमः सिद्धेज ॐ नमः सिद्धेज ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोये सवसाहूणं नट्ठवियट्टकम्मं वीरम्णमियूणपत्तसौवट्टम् अणुभागस्सविहत्तिं जहो वये संपरुवेमो। यह श्री बीरसेनाचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चोरनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। ये जो पांचवी पुस्तक है अनुभाग विभक्ति नाम का अर्थाधिकार, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 97 पर आ गए। 97 अनुभाग विभक्ति के बारे में अपना भुजगार का प्रकरण चल रहा है। जब भुजगार कहेंगे तो भुजगार, अल्पतर और अवस्थित, ये जो विभक्ति है उसकी बात यहाँ हम देखेंगे। देखो, आपको याद होगा स्थिति विभक्ति में हमने एक और उसमें और एक पद देखा था, अवक्तव्य। क्यों? जहां कोई सत्ता नहीं थी और उत्पन्न हुई। यहाँ तो ऐसे कोई बात नहीं है, अनुभाग है ही नहीं और फिर उत्पन्न हुआ, इसकी बात अभी तो नहीं है। प्रकृति ही नहीं थी और फिर उत्पन्न हुई, ऐसा हुआ था ना, वो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में। ये तो यहाँ हम मोहनी की मूल प्रकृतियों की बात देख रहे हैं। मूल प्रकृतियों में तो हमेशा ही होगी ही, उत्तर प्रकृतियों में जब प्रकरण आएगा तब उसको देखेंगे। देखो अभी यहाँ क्या कहते हैं, ये अभी हम काल अनुगम हमने देखा था, भुजगार का लगातार काल, अल्पतर का लगातार काल और अवस्थित का लगातार काल। भुजगार का लगातार काल कितना हो सकता है? सब में जगन्य तो एक समय होता है, पर उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, क्योंकि लगातार अधिक 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 बंद होता रहे तो। अल्पतर का लगातार काल जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कब होता है? क्षपणा में, क्षपणा में, क्योंकि लगातार होना चाहिए। वैसे मिथ्या दृष्टि भी अल्पतर करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, परंतु क्षपणा के अलावा अन्यत्र जब होता है उसका, तो एक समय होता है घात। और अवस्थित लगातार कितना चलेगा? तो कम से कम एक समय, और अधिक से अधिक लंबा काल अवस्थित किसके होता है? तो सम्यक दृष्टि के होता है, या कोई क्रिया रहित वाला जो कोई ग्रह मिथ्या दृष्टि, कहाँ का? भोग भूमि का और आनंद से लेकर ऊपर का, उनमें भी अवस्थित ही रहेगा, भुजगार नहीं होगा मिथ्या दृष्टि होते हुए भी। इतनी बातें हमने देखी थी, ये तो हमने काल देखा था। अभी हम अंतर देखने जा रहे हैं, अब नया अनुगम शुरू होने वाला है। यहाँ पर 97 पेज पर ये चार नंबर का अनुयोग है, भुजगार में चार नंबर का। पहले समुत्कर्तना देखी हमने, फिर स्वामित्व देखा, काल देखा, अभी अंतर देख रहे हैं। अंतरानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय कर्म की भुजगार विभक्ति का अंतर काल कितना है, ये एक जीव की अपेक्षा ही बात चल रही है। तो जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि पहले भुजगार किया, फिर अवस्थित हुआ, फिर दोबारा भुजगार किया, ऐसा भी हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतर तीन पल्ले अधिक 163 सागर है। ये तीन पल्ले अधिक 163 सागर जो है, वो हमने अवस्थित का उत्कृष्ट काल देखा था ना, हाँ। उसमें तो पहले पल्ले का असंख्यात भाग लिया था, यहाँ तो तीन पल्ले लिया है, क्योंकि भुजगार जो है तीन पल्ले वाली आयु में भुजगार नहीं होगा, है उतना रह सकता है, भुजगार नहीं होगा। तीन पल्ले वाली आयु में और ऊपर आनंद से लेकर ऊपर ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि के रहते हुए भी भुजगार नहीं होगा, ये बात ख्याल में आई? तो उतना यहां अंतर बताया है। मिथ्यात्व अवस्था में अन्यत्र इतना लंबा अवस्थित का काल नहीं पाया जाएगा, एक अंतर्मूर्त ही होगा। ये भोग भूमि को छोड़ो, आनंद से लेकर ऊपर वालों को छोड़ दो, अन्यत्र जो मिथ्या दृष्टि है उनके लगातार अवस्थित है वो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां किसका हम अंतर देख रहे हैं? भुजगार का उत्कृष्ट अंतर, वो कितना है? तो तीन पल्ल्य अधिक 163 सागर। इसका विशेषण देखेंगे फिर। अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर, अंतर मूर्त, वो त के ऊपर रफार देना, क्या कहते हैं? अल्पतर का अंतर कब होगा? या तो भुजगार होना चाहिए या अवस्थित होना चाहिए, तो वो अंतर्मूर्त ही होगा। और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात वे भाग अधिक 163 सागर है। मैंने पहले अल्पतर किया था, भोग भूमि का है, पल्ले के असंख्यात वे भाग पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति की उसने, और फिर वह मिथ्यात्व में गया है। बाद में अंत में उसने सम्यक तो प्राप्त किया और 66 सागर तक वेदक सम्यक के साथ रहा वो। तो पल्ले का असंख्यात भाग पहले क्यों उसको प्राप्त कराया सम्यक तो, और फिर क्यों छोड़ा, और फिर अंत में फिर क्यों लिया, ये प्रश्न है ना? देखो, पहले पल्ले के असंख्यात भाग पहले इसलिए लिया कि वहां उपशमिक सम्य दृष्टि हुआ, तो तभी उसने अल्पतर किया था। उसके बाद अनुभाग उतना का उतना रहेगा, मिथ्यात्व में आए तो भी, अभी मिथ्यात्व में लाना उसको, तो उसका उतना का उतना रहेगा। कब तक? अंत तक। तीन पल्ले, वो पल्ले का असंख्यात भाग पहले उसने उपशम सम्यक तो प्राप्त किया था, उस समय उसने अनुभाग कांडक के द्वारा अल्पतर किया था, बाद में मिथ्या दृष्टि हुआ और उसकी उद्वेलना वगैरह जो कुछ वहां चलेगा, तो पल्ले के असंख्यात वे भाग काल तक रहा हो, उतने काल तक वो वेदक हो सकता है फिर, इसलिए इतना काल उसको पहले औपशमिक किया, तो वो वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है। तो वेदक सम्यक तो के प्राप्ति में कोई अनुभाग का घात नहीं होता है, उतना अनुभाग रहा उसका। हमें कौन सा? अल्पतर का अंतर चाहिए, फिर वहां 66 सागर वेदक समय दृष्टि रहा, एक अंतर्मूर्त तक सम्यक मिथ्यात्व में आया, फिर 66 सागर वेदक सम्यक्त्व के साथ वो ग्रहवेग में गया, वहां जाते ही मिथ्यात्व में गया, और मिथ्यात्व में जाकर फिर 31 सागर तक अवस्थित ही रहा, यानी उसने बढ़ाया ही नहीं बीच में, या बीच में बढ़ने की बात यहां नहीं हो रही, अल्पतर किया नहीं है, और फिर बाद में मिथ्यात्व में जाएगा, फिर उसको भुजगार भी होगा अल्पतर भी होगा। हाँ, 266 एक साथ, परंतु उसके बीच में अंतर्मूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व लेना 31 सागर। पहले आए थे ना हमने, वो काल देखा था अवस्थित का उत्कृष्ट काल देखा था। हाँ, फिर से पल्ले के, देखो तीन पल्ले की आयु वाला कोई भोग भूमि वाला है, कितने भी पल्ले की क्यों ना, तो उसके पल्ले के असंख्यात वे भाग पहले उसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, उस समय उसने अल्पतर किया था। हाँ, उसके बाद औपशमिक सम्यक तो के बाद वो मिथ्यात्व में आ गया, तो अल्प अभी वेदक नहीं कराना है, अल्पतर हुआ उसका, अभी मिथ्यात्व में आया तो अल्पतर अभी नहीं हो रहा है उसका, मिथ्यात्व में भी अल्पतर नहीं हुआ है। अब वो लगातार भोग भूमि में रहा है, तो भोग भूमि में अवस्थित रहेगा वो, क्योंकि भोग भूमि में भुजगार तो नहीं होगा, तो लगातार अवस्थित रहा, अंत में जाके वैदक सम्यक तो प्राप्त किया, क्योंकि उसका वेदक योग्य काल चल रहा है। हाँ, उसी भोग भूमि में अब उसका वेदक का वेदक सम्यक तो का काल चालू हो जाएगा, तो उसको भी 66 सागर, एक अंतर्मूर्त के लिए समय मिथ्यात्व, फिर 66 सागर, वो 66 सागर के अंत में वो ग्रेवेक में जन्मा है, और वहां जाके वो मिथ्यात्व में चला गया। वहां तो अधिक बंध होता नहीं, तो अवस्थित ही रहेगा उसका, तो 31 सागर और उसमें जोड़ देना। बाद में जब मनुष्य में आएगा, मिथ्यात्व में जाएगा, वो बात देव मनुष्य, क्योंकि 66 सागर की शुरुआत ही हमने देव में से की है, और सम्यक तो बना रहे, तो उसके अलावा उसके और कोई पर्याय नहीं है, देव और मनुष्य के ही भव होते रहेंगे। हाँ, घात किए बिना वेदक प्राप्त किया उसने, करण परिणाम के बिना वाला। देखो ये 97 प्रश्न पर है, पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन, अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त के हाँ पश्चात तो अवस्थित होगा, उत्कृष्ट अंतर। अवस्थित का काल इतना लंबा हो सकता है जो अल्पतर का हमने अंतर देखा, विशेषार्थ ओब से मोहनीय की भुजगार विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि भुजगार के बाद एक समय के लिए अवस्थित या अल्पतर विभक्ति के हो जाने पर पुनः भुजगार विभक्ति के होने पर जघन्य अंतर एक समय होता है, और उत्कृष्ट अंतर 3 पल्ले अधिक 163 सागर है, क्योंकि कोई मनुष्य भुजगार विभक्ति को करके पहले उसने भुजगार किया, पुनः अल्पतर विभक्ति को करके मरकर देव कुरु में उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमें अल्पतर का अंतर चाहिए, तो पहले उसने भुजगार किया था, बाद में अल्पतर किया, तो अल्पतर एक बार करने के बाद अंतर चालू हो गया उसका, तो भोग भूमि में जाने के पहले उसने अल्पतर कर दिया, फिर मरकर देव कुरु में उत्पन्न हुआ। 97 पेज विशेषार्थ देख रहे हैं, ये भुजगार विभक्ति का अंतर देख रहे हैं, उत्कृष्ट अंतर 3 पल्ले अधिक 163 सागर अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो पहले में भोग भूमि में उत्पन्न होने के पहले एक अंतर्मूर्त तक उसने अल्पतर के बाद अवस्थित किया, एक अंतर्मूर्त वहां बिताया अवस्थित के साथ, मरकर देव कुरु में उत्पन्न हुआ, यानी 3 पल्ले वाली उत्कृष्ट उत्तम भोग भूमि में, वहां भुजगार विभक्ति नहीं होती, किसी के भी नहीं होती, सम्य दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, भोग भूमि में भुजगार नहीं होती। अंत समय में वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके, ये पहले वाला लिया है भुजगार का अंतर, अल्पतर के अंतर में हमने वो पल्ले के असंख्यातवे भाग पहले लिया था, ये भुजगार का अंतर देख रहे हैं, तो पूरे 3 पल्ले तक उसका अवस्थित रहा ना,
नहीं उसने बीच में सम्यक्त को प्राप्त किया होगा ना, क्योंकि वेदक सम्यक्त अंत में प्राप्त किया वापस,
नहीं अभी नहीं किया, वो वाला जो हमने देखा था,
नहीं अंत समय में वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके
यहाँ अंत समय में किया है।
हाँ। तो बीच में उसने सम्यक्त प्राप्त किया,
हाँ सम्यक्त तो प्राप्त किया था
और वापस मिथ्यात्व में गया और अंत में जाके वेदक सम्यक्त को प्राप्त किया।
हाँ, क्योंकि भुजगार का अंतर देख रहे हैं ना, देखो फिर पढ़ती हूँ, भुजगार का अंतर हम देख रहे हैं, अल्पतर का नहीं, यानी बीच में अवस्थित के बाद अल्पतर हो सकता है, अल्पतर हो सकता है। फिर से ये क्या कहना चाहते हैं, देखो हमने अल्पतर के बारे में क्या देखा था, अल्पतर का अंतर घटित करते समय उसको बीच में अल्पतर नहीं होना चाहिए, अल्पतर के अंतर में, तो अल्पतर कब हुआ, उपशम सम्यक्त के काल में, तो उसको अगर पहले ही उपशम सम्यक तो प्राप्त कराते हैं अल्पतर करके, तो बाद में लंबा काल उसको वहां बिताना पड़ेगा, फिर वेदक सम्यक तो करेगा, तो 66 सागर उसका उसी में बीत जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिया। अभी हम भुजगार की पहले बात सोचेंगे, फिर अल्पतर को बाद में सोचेंगे। ये भुजगार का अंतर कैसे करना है, कोई मनुष्य या तिर्यंच जो भोग भूमि में अभी जन्मने वाला है, उसने आयु के एक अंतर्मुहूर्त पहले भुजगार किया था, भुजगार के बाद अल्पतर किया और अल्पतर करके अवस्थित रहा एक अंतर्मुहूर्त तक, भुजगार का अंतर घटित करना है ना, तो भुजगार के बाद अल्पतर किया, अल्पतर के बाद अवस्थित, ये दोनों ही भुजगार के अंतर कहलाएंगे। फिर तीन पल्ले वाली भोग भूमि में उत्पन्न हुआ, वहां भुजगार होता ही नहीं, अल्पतर हो सकता है। अल्पतर कैसे, औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करे तो अल्पतर होगा बीच में। तो ये तीन पल्ले में शुरू में तो उसको मिथ्या दृष्टि रखेंगे, उनकी भुजगार तो होना ही नहीं है। फिर पल्ले के असंख्यात भाग पहले उष्म सम्यक तो प्राप्त किया, उस समय अल्पतर हुआ, परंतु हमें भुजगार का अंतर देखना है, इसलिए हुआ तो कोई बात नहीं। फिर वो उसका आयु के अंत में वेदक सम्यक को प्राप्त किया, इसलिए पूरे तीन पल्ले और पहले वाले दो अंतर्मुहूर्त लेना, और उसके बाद वो 66 सागर और 31 सागर, इतने काल तक भुजगार हुआ ही नहीं, तो तीन पल्ले अधिक 163 सागर हुए वेदक सम्यक। इसलिए उसके पहले एक बार उपशम सम्यक तो प्राप्त कराना है बीच में। हाँ, मिथ्या दृष्टि उसका वेदक योग्य काल चलेगा, क्योंकि अल्पतर किया है उसने, हमें भुजगार का अंतर देखना चाहिए, तो बीच में अल्पतर हो तो चले, इसलिए वहां पूरे तीन पल्ले और 163 सागर, और अल्पतर के अंतर में फिर वो पल्ले के असंख्यात भाग अधिक 63 सागर वगैरह वगैरह लिया, 163 सागर। देखो इसको फिर पढ़ती हूँ मैं, भुजगार का अंतर। शुरू से विशेषार्थ, ओग से मोहनी की भुजगार विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि भुजगार के बाद एक समय के लिए अवस्थित या अल्पतर विभक्ति के हो जाने पर पुनः भुजगार विभक्ति के होने पर जघन्य अंतर एक समय होता है, और उत्कृष्ट अंतर तीन पल्ले अधिक 163 सागर है। इसी का एक्सप्लेनेशन अभी हमने देखा था, क्योंकि कोई मनुष्य भुजगार विभक्ति को करके पुनः अल्पतर विभक्ति को करके मरकर देवकुरु में उत्पन्न हुआ, वहां भुजगार विभक्ति नहीं होती, अंत समय में वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करके 266 सागर तक सम्यक्त्व और समय मिथ्यात्व के साथ भ्रमण कर एक अंतर्मूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व में भी आता है, इसलिए उसके साथ भ्रमण कर अंत में उपरिम ग्रहवेक में 31 सागर के, वो बीच में कुछ दंड जैसा दिखता है, वो नहीं चाहिए, 31 सागर की स्थिति लेकर जन्मा, और अंतर्मूर्त के पश्चात मिथ्या दृष्टि हो गया वहां जाने पर। वहां मिथ्या दृष्टि हुआ तो भी भुजगार तो करेगा ही नहीं, मिथ्या दृष्टि हो जाने पर भुजगार विभक्ति नहीं हुई, क्योंकि अच्युतादिक में उसका निषेध है। इस प्रकार एक्चुअली आनतादिक में चाहिए ना, यहाँ पर आनत से लेकर अच्छे के बदले आन करना, आनत आदि में उसका निषेध है। इस प्रकार भुजगार विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर तीन पल्ल्य अधिक 163 सागर होता है। इतने बात ख्याल में आए भुजगार का अंतर, अब अल्पतर का अंतर देखेंगे। अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, अल्पतर का अंतर एक बार अल्पतर होने के बाद कोई अन्य हो जाए और फिर अल्पतर हो जाए, एक समय का अंतर नहीं हो सकता। अल्पतर में एक बार अल्पतर हुआ फिर दोबारा अल्पतर, अल्पतर होने के लिए वो अनुभाग कांडक घात होना आवश्यक है। तो एक बार अल्पतर हुआ तो दूसरा कांडक होने के लिए एक अंतर्मूर्त चला जाएगा। एक अनुभाग कांडक हुआ अंतर्मूर्त, फिर दूसरा शुरू हुआ उसकी समाप्ति के लिए और एक अंतर्मूर्त। इसलिए कहते हैं अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, जो जघन्य अनुभाग कांडक प्रमाण होगा। ये जो अंतर है वो, क्योंकि अनुभाग कांडक भी छोटे बड़े होते हैं, यानी जघन्य अनुभाग कांडक का जो काल है उत्कीर्णा काल, अर्थात जिस प्रकार भुजगार विभक्ति और अवस्थित विभक्ति एक समय के बाद भी हो जाती है, उसमें तो जघन्य अंतर एक समय है, देखा ना हमने, एक बार भुजगार हुआ एक समय के लिए अवस्थित रहा और फिर भुजगार हुआ, तो भुजगार का जघन्य अंतर एक समय तो घटित होता है। अवस्थित में भी पहले अवस्थित था, एक समय के लिए भुजगार या अल्पतर हुआ और फिर अवस्थित रहा, तो उसमें तो जघन्य अंतर एक समय होता है। ऐसा जघन्य अंतर अल्पतर में नहीं होता। अल्पतर में कम से कम अंतर्मूर्त बीतेगा तब दोबारा जाके अल्पतर होगा। अंतर के लिए, काल के लिए हमने देखा था लगातार अंतर्मूर्त तक अल्पतर होता है, कब? क्षपणा में, चारित्र मुख की क्षपणा में। देखो जिस प्रकार भुजगार विभक्ति और अवस्थित विभक्ति एक समय के बाद भी हो जाती है, यानी एक समय के अंतर से, उस तरह अल्पतर विभक्ति नहीं होती। तथा उत्कृष्ट अंतर, पहले अवस्थित विभक्ति का जो उत्कृष्ट काल 163 सागर और पल्य का असंख्यातवा भाग बतलाया है, उतना ही है। ये अवस्थित का उत्कृष्ट काल वो अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर है। भुजगार में तो हमने तीन पल्य लिए पूरे, अल्पतर में नहीं, क्योंकि वो भुजगार के जो हमने देखे थे तीन पल्य, उसके बीच में अल्पतर भी हुआ था, यानी वहां जो अंतर देखा था अवस्थित प्लस बीच में अल्पतर और फिर अवस्थित, ऐसा काल देखा था। अल्पतर में हमने ऐसा देखा, एक बार अल्पतर किया उसके बाद लगातार अवस्थित रहना चाहिए। तो पहली बार अल्पतर कब किया उसने? तो उपशम सम्यक्त्व प्राप्ति के समय, फिर वो अवस्थित रहेगा भोग भूमि में, अंत समय में जाके वेदक सम्यक्त्व प्राप्त कराना है, जो उसका वेदक योग्य काल है। तो घात किए बिना वहां उसने वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया, ऐसा जीव लेना। अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अवस्थित का अंतर बता रहे, अवस्थित का काल तो लंबा हो सकता है, परंतु अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि पहले भुजगार और अल्पतर विभक्ति का ओघ से इतना ही काल बतलाया है। भुजगार का लगातार काल अंतर्मूर्त, अल्पतर का लगातार काल अंतर्मूर्त, इसलिए यह अवस्थित का अंतर तो इतना ही होगा। अब आदेश में देखेंगे, ये हमने ओघ में इन जनरल अंतर देखा है। आदेश से नारकियों में मोहनीय कर्म की भुजगार विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जघन्य दोनों का जघन्य बताया पहले, भुजगार का जघन्य एक समय और अल्पतर का अंतर, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त। ओघ में भी हमने जघन्य अंतर अंतर्मूर्त ही देखा था, ये कब होगा नारकियों में? जघन्य अंतर है ना, अनुभाग कांडक घात जब होते हैं औषमिक सम्यक्त के या अनंत अनुबंधी के विसंयोजना में, तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त वाला अंत अनुभाग कांडक का काल है। एक बार घात हुआ फिर अंतर्मूर्त के बाद दोबारा हुआ, तो ये अल्पतर का अंतर कहलाएगा। तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है, यानी उत्कृष्ट अंतरण है अवस्थित का उत्कृष्ट काल, और ये अवस्थित का उत्कृष्ट काल सम्यक दृष्टि के ही हो सकता है। मिथ्यात्व में तो अंतर्मूर्त से ज्यादा अवस्थित नहीं रह सकता। अब अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, ये हमने ओघ में भी देखा था। इसी प्रकार यानी इतने इससे अधिक काल तक वो अवस्थित नहीं रह सकता, या तो अल्पतर हो जाएगा या भुजगार हो जाएगा। इसी प्रकार सब नारकियों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है भुजगार और अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण लेना चाहिए। भुजगार का तो एक बार शुरू में भुजगार किया था उसने, बाद में अल्पतर करके सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक दृष्टि रहा, आयु के अंत में फिर मिथ्या दृष्टि हुआ और फिर भुजगार किया, तो ये उत्कृष्ट अंतर हुआ। अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर कैसे है, शुरू में उसने उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, अल्पतर किया, अल्पतर के बाद अवस्थित रहा, अवस्थित के बाद फिर मिथ्या दृष्टि हुआ, फिर भुजगार किया और फिर उसने अल्पतर किया, तब हो सकता है। इसलिए कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहा। तिर्यंचों में मोनिय की भुजगार विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ल्य के असंख्यात वे तो रह गया यहाँ पर। किसका अंतर देख रहे हैं हम?
भुजगार
का। तो तिर्यंचों में देख रहे हैं, तिर्यंचों में भुजगार का अंतर। भुजगार कौन करेगा? कोई भी मिथ्या दृष्टि कर सकता है। हमें अभी उत्कृष्ट अंतर देखना है। तो किसी पंचेंद्रिय ने भुजगार किया, उसके बाद वो अवस्थित अल्पतर कुछ किया और वो एकेंद्रिय में चला गया, तो लगातार क्या होगा उसका?
अल्पतर
कंटिन्यूस नहीं होगा, बीच में अवस्थित अल्पतर, अवस्थित अल्पतर, अवस्थित अल्पतर, ऐसा चलेगा। जघन्य अनुभाग होने के लिए कितना काल लगेगा? पल्ल्य का असंख्यात भाग। एक बार जघन्य होने के बाद लगातार तो जघन्य नहीं रहेगा, क्योंकि अवस्थित अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता, फिर वो बढ़ाएगा वहां पर। उत्कृष्ट होगा ये नहीं कह रहे, बढ़ेगा जरूर, भुजगार कहेंगे उसको, उसके अपने योग्य जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाएगा वो। तो वहां भुजगार हुआ पल्ले के असंख्यातवे भाग काल के बाद। जब हमने उत्कृष्ट की बात की थी, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति के लिए अंतर देखा था, तो पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट अनुभाग था, एकेंद्रिय में चला गया, वो जघन्य हुआ, फिर एकेंद्रिय के योग्य रहा जिसको हम अनुत्कृष्ट ही कहेंगे, और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बाद फिर पंचेंद्रिय हुआ, उसका उत्कृष्ट किया। तो इसके लिए जो किसका हमने देखा था? उत्कृष्ट का अंतर। और यहाँ क्या लेना है? भुजगार का अंतर। भुजगार ने बस बढ़ाना, इतना ही लेना, कितना बढ़ाता है वो वृद्धि में चलेंगे। तो एक बार उसने पंचेंद्रिय के रहते हुए भुजगार किया था, बढ़ाया जितना है, कितना बढ़ाया उसके कुछ मतलब नहीं हमें, और फिर वो एकेंद्रिय में आया है। एकेंद्रिय में आने के बाद लगातार उसका घटता चला जाएगा, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में घटेगा, तो घटकर जिसको हतसमुत्पत्ति होने के लिए पल्ल्य का असंख्यात भाग काल लगेगा। उसके बाद वो नियम से उसके योग्य बढ़ाएगा ही, तो उसको हम भुजगार कहेंगे। एक सागर की तो स्थिति हो जाएगी, यहाँ अनुभाग की बात चल रही है अपनी। हाँ, जैसे स्थिति भी घटने के लिए पल्ले का असंख्यात भाग लगता है ना, अनुभाग भी घटेगा उतने काल में। अच्छा, अभी थोड़ा अभी अनुभाग में आए कि नहीं, स्थिति से उतर कर। हम वही सोचते हैं ना, दो तीन पुस्तकें तो उसी की चली अपनी। हाँ देखो, एक क्या देखा हमने, भुजगार का उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात भाग। इतना किसका? स्थिति और अनुभाग दोनों ही घटते हैं, तो कोरिलेशन तो थोड़ा होगा वैसा, क्योंकि उसको स्थिति भी, क्योंकि स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात एट ए टाइम हो रहे हैं, हजार होते हैं, क्योंकि अनुभाग कांडक घात का काल छोटा है, फिर भी वो एट ए टाइम दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। हाँ, अनुभाग अनंत में होता है और ये असंख्यात होते हैं।
तो एकदम एंड टू एंड जाएगा।
हाँ,
एंड टू एंड, ये हजारों होते हैं, ये एक होता है।
हाँ,
तो दोनों साथ साथ पे
साथ साथ ही चलते हैं, रहते साथ साथ चलते रहते हैं। उसका भी मिनिमम हो जाएगा, इसका भी मिनिमम हो जाएगा। देखिए, हमने भुजगार का उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग कहा, अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, हमेशा ही अल्पतर का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त ही है, उससे कम काल में अल्पतर नहीं होगा। जहां अंतर्मूर्त तक अल्पतर लगातार होता है, वहां कोई अंतर नहीं है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रति समय अनंत गुना घटता चला जाता है, जिसको हमने अनुसमयापवर्तन कहा था, उसमें अंतर नहीं है। परंतु जहां अनुभाग कांडक घात होते हैं, वहां अंतर है, तो जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त अधिक तीन पल्ले हैं, ये हम तिर्यंच में देख रहे थे। अन्यत्र देखना है तो पहले अल्पतर किया है और फिर भूमि में गया है, फिर ऐसे हमने घटित किया था। वो वन थर्ड पल्ले, वन थर्ड लिया ना, वन थर्ड नहीं, पल्ले का असंख्यात भाग अधिक 163 सागर लिया था, परंतु उसमें भोग भूमि का एक भव हुआ और फिर देव मनुष्य के बहुत सारे भव हुए, यह हम तिर्यंचों में देख रहे हैं। तो तिर्यंच में पहले उसने अल्पतर किए, फिर अवस्थित रहा अंतर्मूर्त तक, भोग भूमि में गया और तीन पल्ले तक अवस्थित रहा, और अंत में फिर उसको अल्पतर कराना चाहिए तिर्यंच में रहते हुए, तो अंत में औपशमिक समय तो प्राप्त किया, तो उसने अल्पतर किया। फिर दोबारा देखो, यहाँ देखते हैं,
तो यहाँ पे अधिक चाहिए अंतर्मूर्त, अधिक तीन पल्ले
लिखा है ना,
क्योंकि उसको वहाँ पे भी उसको अंत में जाके समय को प्राप्त करना है।
हाँ,
तो वो समय तो प्राप्त अंतर्मूर्त पहले प्राप्त कर लेगा,
अंतर्मूर्त पहले प्राप्त करेगा, और यहाँ अंतर्मूर्त पहले उसने अल्पतर किया था, फिर भी यहाँ उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त अधिक तीन पल्ले का। अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, यह अवस्थित का सब जगह इतना ही लिया हमने। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है मोहिनी की, भुजगार विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। वहां कितना लिया था? पल्ले का असंख्यात भाग। क्यों? क्योंकि वहां भुजगार एक बार किया था और फिर एकेंद्रिय में ले गए थे, जिसको पल्ले का असंख्यात भाग लगेगा। अब यहां कैसे लेना है? भुजगार विभक्ति का अंतर कैसे घटित करेंगे हम पंचेंद्रिय तिर्यंच में?
भुजगार किया, पीछे अवस्थित हो गया।
हाँ, भुजगार किया, फिर अवस्थित। हाँ,
और अंत में जाके वापस
अवस्थित, तो कोई किसी के अंतर्मूर से ज्यादा रहता नहीं है।
नहीं तो सम्यक,
हाँ सम्यक तो प्राप्त कराना, तो पूर्व कोटि पृथक्त्व कैसे होगा? लगातार इतने तिर्यंच में रहेगा नहीं पूर्व कोटि पृथक्त्व तक, और कोई तरीका ढूंढो। देखो, संगी पंचेंद्रिय था तो उसने भुजगार किया, फिर असंगी में उत्पन्न हुआ, अच्छा। तो असंगी में संगी असंगी के योग्य हत समुत्पत्ति करने के लिए संगी का अनुभाग लेके आया है। पल्ले का असंख्या तो अभाग कहाँ, यहाँ उसको टाइम कहाँ, इतना असंगी में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, पूर्व कोटि पृथक्त्व, फिर जाके संगी में उत्पन्न होगा, फिर भुजगार करेगा इस। अरे सम्यक तो होगा भी नहीं असंगी में। हाँ, अगर सम्यक तो के साथ रखना है भुजगार के लिए उसको, ये तीन पल्ले वाले भी आयु नहीं ले सकते क्योंकि भुजगार किया हमने, मान लेते हैं तीन पल्ले तक अवस्थित भी रहा, फिर बाद में तिर्यंच का रहते हुए, तिर्यंच में रहते हुए भुजगार तो नहीं करेगा पल्ले भोग भूमि में, देव में चला जाएगा, इसलिए तिर्यंच मार्गना में वो भी घटित नहीं होगा। ख्याल में आता है मैं क्या कहना चाहते हैं? भुजगार का अंत तो शुरू होगा परंतु समाप्त तो उसको तिर्यंच में ही करना है, तिर्यंच के रहते हुए दोबारा भुजगार करना है उसको, तो इसलिए संगी पंचेंद्रिय ने भुजगार किया था, फिर उसमें से उसने अवस्थित किया और फिर असंगी में उत्पन्न हुआ है, और वहां लगातार वो घटाएगा असंगी के योग्य करेगा, तो असंगी की कितना काल है उत्कृष्ट, पूर्व कोटि पृथक, तो
फिर
24 लेंगे वहां, और फिर वहां
से संगी में उत्पन्न,
संगी में उत्पन्न हो जाएगा। 24 के 48 भी ले सकते हैं ना उसको, एक अपर्याप्त वाला बीच में ले लो, असंगी के तीन वेद वालों 8-8 भव, फिर एक अपर्याप्त बीच में, और फिर 8-8-8 असंगी के ही, 24 और 24, असंगी के 24 बीच में अपर्याप्त असंगी का और फिर असंगी का ही, क्योंकि तिर्यंच में हमने कितने पंचेंद्रिय तिर्यंच में कितने घटित करते हैं, 96 प्लस तीन पल्ले करते हैं ना, यानी 96 पूर्व कोटि हो सकती है संगी असंगी के मिलके, अकेले असंगी के 48 उतने तो ले सकते हैं यहाँ पर असंगी का ही, संगी के योग्य नहीं करना है, वो भुजगार हो जाएगा बीच में। हाँ, विशेषार्थ है क्या आगे, आगे होगा। देखो हम पढ़े ये तिर्यंच की बात पढ़ लेते हैं पहले, फिर विशेषार्थ में जाएंगे, बाद में देवों का पढ़ेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में अभी वो पंचेंद्रिय में बता चुके, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में तो हमने देखा पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में, अपने अपने समझना उसको, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त जब लिए थे तो संगी पर्याप्त में से असंगी पर्याप्त में लाना, तो फिर उसके पूर्व कोटियां कम हो जाएगी ना, 24 ही हो जाएंगे, परंतु उसको कहेंगे क्या पूर्व कोटि पृथक्त्व, और अकेले योनिनी में लेना है तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में संगी वाले लेना, पहले संगी में भुजगार किया, असंगी में योनिनी योनिमति होकर उत्पन्न हुआ, 8 भव हुए और फिर वापस चला गया। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में भुजगार और अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में भुजगार, एक बार भुजगार किया, फिर एक समय के लिए अवस्थित रहा, फिर भुजगार किया, तो उसका अंतर एक समय होगा, जघन्य अंतर। अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अब ये अधिक अनुभाग के साथ पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तक में आया है, जैसे संगी पंचेंद्रिय में से इसमें आया है, एक बार अनुभाग घटाया तो अंतर्मूर्त के बाद फिर घटाएगा, तो इसलिए उसका जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। और सब विभक्तियों का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। शुरू में किया और वो अपर्याप्त के बहुत सारे भोग किए तो भी अंतर्मूर्त ही रहा, और अंत में दोबारा किया तो ये अंतर्मूर्त अंतर घटित होता है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त को में जानना चाहिए। सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि भुजगार विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। क्यों? वहां तो संगी में से असंगी में लाया था, अब मनुष्य में तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो क्या करेंगे?
भुजगार हुआ, पीछे उसने
भुजगार हुआ, फिर अल्पतर किया, अवस्थित रहा, सम्यक तो प्राप्त किया, आयु के अंत में फिर मिथ्या दृष्टि हुआ, भुजगार किया, तो पूर्व कोटि से कुछ कम हो जाएगा ना उसका। अब इसका विशेषार्थ पहले पढ़ते हैं, फिर हम आगे देवों के बारे में पूछेंगे। विशेषार्थ 99 पृष्ठ पर आदेश से, वो उसे तो हमने देखा था, आदेश से सभी मार्गणाओं में भुजगार विभक्ति का जघन्य अंतर काल एक समय है। ओग में भी हमने जघन्य अंतर तो एक समय देखा ही था। अल्पतर विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, ये भी सब जगह ऐसा ही है। अल्पतर का जघन्य अंतर हमेशा ही अंतर्मूर्त होगा और अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, जैसा कि ओग से बतलाया है। ये जो कथन है, मार्गणा हो या ओग हो, एक ही कहा। क्या? भुजगार का जघन्य एक समय, अल्पतर का जघन्य अंतर्मूर्त, और अवस्थित का जघन्य भी एक समय, और अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। विशेषता केवल भुजगार और अल्पतर विभक्ति के उत्कृष्ट अंतर काल में है। ओघ में और मार्गणाओं में भुजगार का उत्कृष्ट और अल्पतर का उत्कृष्ट अलग अलग होगा, जो कि इस प्रकार है। ओघ में तो हमने देखा था भुजगार का अंतर 3 पल्ल्य अधिक 163 सागर, और अल्पतर का अंतर उत्कृष्ट अंतर पल्ल्य का असंख्यातवा भाग अधिक 163 सागर। अब यहाँ हम मार्गणाओं में देख रहे हैं। सामान्य नारकियों में दोनों विभक्तियों का, दोनों यानी भुजगार और अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि सातवें नरक का एक मिथ्या दृष्टि नारकी भुजगार विभक्ति को करके पुनः अल्पतर विभक्ति को करके सम्यक दृष्टि हुआ, तो सम्यक दृष्टि हुआ तो उसका अवस्थित चला है ना, और थोड़ी आयु शेष रहने पर सम्यक तो से च्युत होकर पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया, और वहां उसने भुजगार विभक्ति की तो उसका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर होता है। इसी प्रकार अल्पतर विभक्ति का भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि पहले भुजगार किया था, अल्पतर किया, अल्पतर के बाद सम्यक तो प्राप्त किया, फिर लगातार अवस्थित रहा, बाद में फिर मिथ्यात्व में आया, और मिथ्यात्व में आने के बाद भुजगार किया, अल्पतर किया। प्रत्येक नरक में इसी प्रकार कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। अब तिर्यंचों में जो हमने पढ़ा था अभी, जिसके लिए विशेषार्थ के लिए आए हम, तिर्यंचों में भुजगार विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर पल्ल्य के असंख्यातवे भाग है, क्योंकि पंचेंद्रियों में भुजगार को करके पुनः एकेंद्रियों में जन्म लेकर पल्ल्य के असंख्यातवे भाग काल तक भुजगार के बिना अनुभाग सत्कर्म को करके यानी वो घटाएगा, वहां पर पंचेंद्रिय के योग्य अनुभाग था वो घटते चला जाएगा, पुनः भुजगार करने पर अभी उसको भुजगार करने के लिए पंचेंद्रिय में आने की जरूरत नहीं है, उसने मिनिमम किया और फिर बढ़ा के बांधा। भुजगार विभक्ति का अंतरकाल पल्ले के असंख्यातवे भाग होता है और अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त अधिक तीन पल्य है। क्योंकि कोई तिर्यंश अल्पतर करके भोगभूमि में उत्पन्न हो गया और तीन पल्य की आयु के अंत में कांडक घात किया। कांडक घात कैसे की करेगा? औपशमिक समय तो प्राप्त करेगा तो यह अंतरकाल प्राप्त होगा। पंचेन्द्रिय तिर्यंच पंचेन्द्रिय पर्याप्त, एक्चुअली पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, नहीं तो पंचेन्द्रिय पर्याप्त अकेले कहेंगे तो चारों गति के पंचेन्द्रिय आ जाएंगे। और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियों में भुजगार का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व है, क्योंकि इनमें से कोई तिर्यंच संगी दशा में भुजगार को करके मरकर असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच हो गया और वहां पूर्व कोटि पृथक्त्व काल तक समान अनुभाग सत्कर्म को करके मरकर पुनः संगी पंचेंद्रिय हुआ और वहां उसने भुजगार विभक्ति की तो उतना अंतरकाल होता है, हमने देखा नहीं। तीन प्रकार के मनुष्यों में भुजगार का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि है, क्योंकि किसी मनुष्य ने 8 वर्ष की अवस्था में भुजगार को करके, भुजगार का अंतर कहना है तो 8 वर्ष के बाद सम्यक तो प्राप्त कर सकता है अर्लीएस्ट, तो 8 वर्ष की आयु में उसने पहले भुजगार किया पश्चात सम्यक को प्राप्त किया तो वहां उसने अल्पतर किया था, है ना? यानी भुजगार का तो अंतर में उसने अवस्थित हो या अल्पतर हो सब उसी में आ गए और मृत्यु से कुछ काल पहले सम्यक से च्युत होकर पुनः भुजगार विभक्ति को किया तो भुजगार का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि होता है।
सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में उत्पन्न करा के अंत में जाके उसको मिथ्यात्व में क्यों नहीं लाया?
हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है ना कि सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न कराना था मनुष्य।
हाँ।
कहाँ से आया होगा मनुष्य में सम्यक दृष्टि? हाँ,
देव से।
देव से आया तो अपनी मार्गणा क्या है मनुष्य की? मनुष्य रहते हुए उसको भुजगार करना है तो उसको मनुष्य में मिथ्या दृष्टि रखेगे तभी भुजगार होगा, सम्यक दृष्टि में भुजगार होता ही नहीं है, है ना? और वो भोगभूमि वाला भी नहीं ले सकते हम क्योंकि वहां भुजगार होता ही नहीं है। वहां से स्वर्ग जाएगा मगर वहां मनुष्य की आयु 3 पल्ले भले हो, ये पूर्व कोटि वाली है और 3 पल्ले वाली है, परंतु वहां भुजगार होता ही नहीं तो अंतर का सवाल ही नहीं है, इसलिए पूर्व कोटि लेनी चाहिए। अब पूर्व कोटि में मिथ्या तो सही जन्मा है तो सम्यक तो कब प्राप्त कर सकता है? 8 साल के बाद। तो प्राप्त करने के पहले पहले उसको भुजगार कराना है ना, उस समय तो भुजगार किया उसने, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया अल्पतर करके अवस्थित रहा, अंत में जाके फिर मिथ्या दृष्टि हुआ और फिर भुजगार किया तो भुजगार का अंतर होगा। यहाँ शेष कथन पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। अब ये देवों की बात हमने पढ़ी नहीं तो फिर पढ़ेंगे, वापस 98 पर आते हैं, 150 नंबर का नीचे का पैराग्राफ। देवों में मोहिनी कर्म की भुजगार विभक्ति का अंतर कितना है? अब देवों में भुजगार कौन नहीं करते हैं? नहीं, मिथ्यात्व में रहते हुए भुजगार सम्यक दृष्टि तो कोई भी नहीं करता, आनंद से लेकर ऊपर नहीं करेंगे, तो कहाँ तक के भुजगार कर सकते हैं? सहस्रार तक के कर सकेंगे है? तो यहाँ देखो, हम देखेंगे देवों में मोहिनी कर्म की भुजगार विभक्ति का अंतर कितना है। जगन्य अंतर एक समय वो तो सब जगह घटित होता है, उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 18 सागर है, क्योंकि साधिक 18 सागर वहां की उत्कृष्ट आयु है। तो भुजगार किया, फिर सम्यक तो प्राप्त किया, ये साधिक 18,000 जो सागर जो आयु है उतना बिताया, और लास्ट में जाके फिर मिथ्यात्व में आया देव के रहते हुए भी, और फिर भुजगार किया। आप कहेंगे अन्यत्र तो कुछ कम किया और यहाँ साधिक क्यों कह रहे हैं? घातायुष कहे ना, वो साधिक 18 सागर उसकी आयु है, वो साधिक में से कुछ कम करेंगे तो भी साधिक ही रहेगा। अल्पतर विभक्ति का यानी देवों में अल्पतर विभक्ति का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त जैसे सब जगह होता है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर हैं। ये कुछ कम 31 सागर अल्पतर कैसे होगा? शुरू में एक बार अल्पतर करना चाहिए, लास्ट में एक बार अल्पतर करना चाहिए।
नवे ग्रेविक में गया,
हाँ नवे ग्रेविक में गया,
हाँ
उपशमिक सम्यक्त को प्राप्त किया, क्योंकि अनुभाग कांडक घात किए ना,
अंत में जाके विषय,
अच्छा अंत में जाके विषय योजना की, बराबर। तो कुछ कम 31 सागर होता है। अवस्थित विभक्ति का जगन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है जो सब जगह हमने देखा था। इस प्रकार भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग, वो ग के ऊपर अपार देना, सहस्रार स्वर्ग पर्यंत जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, इनमें भुजगार और अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। जो हमने अभी देवों में सामान्य से सहस्रार के लिए घटाया था, वैसे हर एक स्वर्ग की अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से कुछ कम करना। आनंद स्वर्ग से लेकर नव ग्रेवेक तक के देवों में अब यहाँ भुजगार होता ही नहीं, तो उसका अंतर कहने का भी सवाल नहीं है। अल्पतर विभक्ति का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त जो दो कांडकों के बीच होता है वो, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। शुरू में एक बार कांडक किए, फिर लास्ट में जाके किए। अवस्थित विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है।
ये अवस्थित का उत्कृष्ट एक समय कैसे होगा?
देखो हमने हमेशा अवस्थित का उत्कृष्ट कितना देखा, हमेशा अंतर्मूर देखा था ना, तो अवस्थित का उत्कृष्ट कैसे घटित होगा, यानी उसको अन्य का काल गिनना है। किसी अच्छा, एक का उत्कृष्ट अंतर के लिए अन्य का उत्कृष्ट काल देखना है।
अच्छा, यहाँ पे अल्पतर एक समय के लिए
देखो, अभी आनत से लेकर ऊपर तक भुजगार होता है कि नहीं?
नहीं होता है,
नहीं होता है ना। अल्पतर
होगा एक समय,
अल्पतर होगा कितने समय के लिए?
एक समय के लिए।
बाद में क्या होगा? अवस्थित रहेगा, यानी भुजगार होता नहीं है, और अल्पतर होता है तो एक समय के लिए होता है, इसलिए एक समय ही घटित होगा। ख्याल आई बात? नहीं आई? देखो फिर से, हम अन्यत्र जहां अभी मिथ्या दृष्टि है, कोई देवों को भूल जाओ, ओघ में हमने क्या देखा था, अवस्थित का अंतर कितना होता है? एक समय मिनिमम। कैसे? एक समय के लिए या तो अल्पतर हुआ या भुजगार हुआ, तो अवस्थित का एक समय अंतर घटित हुआ। अब कोई मिथ्या दृष्टि है, अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर चाहिए, काल नहीं अंतर, तो अवस्थित के उत्कृष्ट अंतर के लिए या तो उसने भुजगार करना चाहिए या अल्पतर करना चाहिए। तो यहां उसने अवस्थित एक बार किया, फिर बीच में लगातार भुजगार कितने काल तक हो सकता है किसी जीव को?
अंतर्मूर्त
तक। तो अंतर्मूर्त तक भुजगार किया और वापस उसने अवस्थित किया, तो उत्कृष्ट अंतर कितना हुआ?
अंतर्मूर्त।
इससे अधिक अंतर नहीं हो सकता। और लगातार जहाँ अल्पतर होता है, क्या उसके बाद फिर अवस्थित होगा? क्योंकि लगातार अल्पतर अंतर मुहूर्त तक चारित्र मौखिक क्षपणा में होता है, इसलिए उसको भी नहीं कंसीडर करना। अवस्थित के अंतर के लिए भुजगार को लेना, यहाँ पे
भुजगार है ही नहीं,
और यहाँ भुजगार नहीं है तो अल्पतर होता है। अल्पतर तो एक समय के लिए होता है, इसलिए जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर एक समय का। क्योंकि अल्पतर एक समय के लिए होता है। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अल्पतर विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मूर्त है। एक बार अल्पतर हुआ, दोबारा अल्पतर होने के लिए भी अंतर मूर्त, और अधिक से अधिक लंबा काल बीच में जाए तो
तो अंतर्मूर्ति होगा ना, क्योंकि क्रिया जब सम्यक। अच्छा, ये
देखो
यहाँ पे तो सम्यक भी जीवी आते हैं,
सम्यक दृष्टि ही आते हैं,
तो वहाँ पे विसंयोजना,
तो या तो विसंयोजना ही होगी तो दूसरा तो कुछ अल्पतर होने का कोई सवाल नहीं है, है ना? तो विसंयोजना में एक बार अल्पतर हुआ, दूसरा कांडक हुआ तो दूसरी बार अल्पतर हुआ, तो बीच में अंतर, तो उसमें कांडक का प्रमाण छोटा बड़ा होगा उत्कीर्ण काल का, तो उतना ही उसका अंतर्मूर्त होगा। ये तो मेरा सवाल, यानी ऐसा सोचना है। हमें देखेंगे यहाँ क्या लिखते हैं, अभी इतना पढ़ के हम विशेषार्थ में जाएंगे। अवस्थित विभक्ति का नीचे से दूसरी लाइन, यहाँ अनुदिश और सर्वार सिद्धि आदि में बात चल रही है, सर्वार सिद्धि तक। अवस्थित विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है, क्योंकि एक समय के लिए अल्पतर होता है ना, यहाँ पर भुजगार तो है ही नहीं है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा पर्यंत विचार करके इस अंतर को ले जाना चाहिए, यानी हर एक मार्गणा में अन्य का कितना काल है, क्या है, उसका विचार करके उसको घटित करना। विशेषार्थ का हमने जहाँ पढ़ा था मनुष्य तक, अब देवों की बात पढ़ेंगे। मिला नीचे से 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 लाइन। देवों में भुजगार का उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 18 सागर है, क्योंकि कोई संगी मिथ्या दृष्टि तिर्यंच या मनुष्य शतार सहस्रार में जन्म लेकर भुजगार को करके पश्चात सम्यक दृष्टि हो गया। मरने के पहले सम्यक से शुद्ध होकर पुनः उसने भुजगार विभक्ति की तो भुजगार का उत्कृष्ट अंतर साधिक 18 सागर होता है। इससे अधिक इसलिए नहीं हो सकता कि अच्युतादिक में, यहाँ भी अच्युतादिक लिखा है, भुजगार नहीं होता।
आनत करना चाहिए
में ही चाहिए, क्योंकि सहस्रार तक लिया ना, उसके बाद तो आनत प्राण तारण अच्युत होते हैं। तथा अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर उपरिम ग्रेवेक की अपेक्षा से जानना चाहिए। ग्रेवेक से ऊपर के देव समय दृष्टि ही होते हैं, अतः उनमें अल्पतर का अंतर अंतर्मूर्त से अधिक नहीं होता, क्योंकि एक अनुभाग कांडक, वो कांडक रह गया, या तो बिंदी लगाओ या ड के लिए न लगाओ, जैसे सर्वत्र लगाया। क्या कहते हैं, ग्रेवे के ऊपर समय दृष्टि होते उनमें अल्पतर का अंतर अंतर्मूर्त से अधिक नहीं होता, क्योंकि एक अनुभाग कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय अल्पतर विभक्ति होती है, उसके बाद दूसरे अनुभाग कांडक की अंतिम फाली के पतन होने में एक अंतर्मूर्त काल लगता है। तो मेरा सवाल है, ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट और जघन्य दोनों अंतर्मूर्ति बताए ना, तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कब होगा? एक ही जीव की अपेक्षा बात करनी, नाना जीवन की बात नहीं करनी। अभी कोई सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्कृष्ट अंतर कब होगा और जघन्य अंतर कब होगा?
जो उत्कृष्ट अनुपात के साथ आया है,
अरे हम जो ने हम एक ही जीव की बात, वो क्या होगा? नहीं उल्टा, पहला कांडक भी बढ़ा और उसका उत्कीर्ण काल भी बढ़ा, और कांडक होते चले जाएंगे, आगे स्पर्धकों की संख्या कम होती चली जाएगी, तो बाद में जो कांडक है वो छोटे होते चले जाते हैं और उसका उत्कीर्ण काल भी छोटा होता है, तो उसमें अंतर भी छोटे हो गए। पहला कांडक बड़ा होगा,
उसमें भी जिसका अनुभव सबसे ज्यादा होगा उसका पहला कांडक सबसे बड़ा।
हाँ, अभी आपको तो ऐसा लेना है जिसका अधिक अनुभव के, बरोबर है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस प्रकार अंतरानुगम समाप्त हुआ। ये एक जीव की अपेक्षा हमने देखे, स्वामित्व देखा, काल देखा, अंतर देखा।
ये वीरियन चापर्याप्त में हमने देखा ना कि अल्पतर का उत्कृष्ट अंतर भी अंतर्मूर्त होता है, वहाँ पे अंतर्मूर्त पे कुछ कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अल्पतर तो तिर्यंच अपर्याप्त में,
तिर्यंच अपर्याप्त में जघन्य अंतर लेना है कि उत्कृष्ट?
नहीं, उसको उत्कृष्ट भी है, उन्होंने अंतर्मूर्त बताया,
क्योंकि अल्पतर होता है कब होता है, वहाँ भी कांडक में होगा।
हाँ।
तो उसमें ऐसा लेना अधिक अनुभाग के साथ आया हुआ जीव, तो वो एक बार उसने घटाया, फिर दोबारा घटाने के लिए अंतर्मूर्त चला जाएगा बीच में, तो वो कितने अनुभाग के साथ आया, क्या है, वो इट डिपेंड्स। अभी हम नाना जीवन की अपेक्षा यहाँ बात चलेगी अपने, स्थिति कांडक घात में भी होते, पहले जहाँ स्थिति ज्यादा है तो कांडक बड़े होते और उसका उत्कीर्ण काल भी बड़ा होता है, स्थिति में भी ऐसा होता है। देखो, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम से, ये अनुगम नंबर कितना है अपने, पहले समुत्कीर्ण कितना और तीन हुए थे ना, हाँ ये पांच नंबर का अनुगम। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम से निर्देश दो प्रकार का है। ये भुजगार में अभी नाना जीवों की अपेक्षा चलेगी हो, पहले हमने केवल अनुभाग विभक्ति में नाना जीव एक जीव किया था और उसमें हमने भंग लगवाए थे नाना जीवों की अपेक्षा, अब यहाँ भुजगार में नाना जीवों की अपेक्षा लगेगी। एक जीव की अपेक्षा लगातार भुजगार कितना देखा हमने, अंतर्मूर्त तक हो सकता है मैक्सिमम। अब यहाँ जो बात है नाना जीवों की अपेक्षा बताएंगे, वो काल में बताएंगे। अब पहले समुत्कीर्तना भुजगार वाले कितने होते हैं, अल्पतर वाले कितने होते हैं, उसमें वो नाना जीव लगेंगे, होते हैं क्या नहीं होते, हमने देखा था ना। देखो, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। उनमें से ओग से मोनी कर्म की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से है। जब हमने उत्कृष्ट देखा था तो नियम से नहीं थे, वहां तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति की बात थी, अब यहाँ भुजगार की बात है। भुजगार इन्हें है उससे बढ़कर बांधना, वो तो एक इंद्रिय भी कर रहे हैं ना, तो वो तो हमेशा होंगे ही सभी गतियों में और सभी जगह, भुजगार करने वाले भी हमेशा पाए जाएंगे। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए, आदेश से नारकियों में मुनि की भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से हैं। अल्पतर विभक्ति वाले जीव भजनीय है, अल्पतर करने वाले कब होते हैं, सम्यक्त्व प्राप्ति में, उपशम समिति की प्राप्ति में या आनंदानुबंधी की विषय योजना में, तो उनमें तो बीच में अंतर पड़ सकता है। कोई एक भी जीव नहीं करने वाला ऐसा हो सकता है कभी, परंतु भुजगार और अवस्थित वाले तो हमेशा हो गए। अब इसमें भंग बताए, क्योंकि सभी अगर हमेशा होते तो भंग ही नहीं बनते। अभी जो भजनीय है तो भंग बनेंगे। भजनीय कितने हैं? अल्पतर वाले। तो अब कहेंगे देखो, कदाचित इन विभक्ति वालों के साथ, कौन से विभक्ति वालों के साथ, जो हमेशा पाए जाते हैं इसलिए भुजगार और अवस्थित, वो तो ध्रुव है, उनके साथ एक अल्पतर विभक्ति वाला जीव होता है। कदाचित इन विभक्ति वालों के साथ अनेक अल्पतर विभक्ति वाले जीव होते हैं। इस प्रकार इन दोनों भंगों में एक ध्रुव भंग के मिलाने से तीन भंग होते हैं। ध्रुव भंग कौन सा? भुजगार और अवस्थित हमेशा ही होते हैं। अब कभी ऐसा होगा ना, एक भी जीव अल्पतर वाला न हो, वो एक भंग। एक जीव अल्पतर वाला है और अनेक जीव अल्पतर वाले हैं, ये तीन भंग। यह हमने देखा एक भजनीय है तो 1 × 3 करना, तो टोटल भंग ध्रुव के साथ तीन हो जाएंगे। इस प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सब मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकों में मुनिय के सब पद भजनीय हैं। सभी भजनीय क्यों? मनुष्य अपर्याप्त ये सांतर मार्गणा है, कभी एक भी जीव नहीं होगा ना मनुष्य अपर्याप्त में, इसलिए भजनीय कहा। भंग 26 होते हैं। क्यों? तीन भजनीय है। यदि ध्रुव होता तो 3 × 3 × 3 27 हो जाते। यहाँ ध्रुव भंग नहीं है तो 27 − 1 26 हो जाएगा। ख्याल में आई बात? आनस से लेकर सर्वा सिद्धि पर्यंत मुनि की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं।
ये मनुष्य अपर्याप्त में अल्पतर वाले कौन हो सकते हैं? वो तो
अल्पतर वाले मनुष्य अपर्याप्तों में अल्पतर कौन होते हैं? तो अधिक सत्ता के साथ जो आए हुए हैं वो अल्पतर करेंगे वहां पर। ऐसे भी कोई भुजगार स्थिति वाला है, मनुष्य में है, विपर्याप्त मनुष्य है, उसने भुजगार किया है लगातार, कितने समय तक करेगा? अंतर्मुर्त। बाद में क्या करेगा?
अवस्थित या अल्पतर।
अवस्थित या अल्पतर करेगा ही ना।
हाँ।
तो वैसे ही वहां उसने किया है भुजगार और यहाँ आया है तो अल्पतर करेगा वो। देखो क्या कहते हैं, आनस से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत मोहनी की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं। किसको छोड़ा? भुजगार को छोड़ा, क्योंकि वहां भुजगार होता ही नहीं है। अल्पतर तो हो सकता है परंतु कभी कभी होगा, तो हमेशा वो जीव नहीं पाए जाएंगे। अल्पतर विभक्ति वाले जीव भजनीय हैं। अब इसमें भंग कितने हो गए?
दो ही भंग है ना,
यहाँ एक है ना ध्रुव, अवस्थित वाला हमेशा होगा। तो इसमें हाँ देखो, अल्पतर विभक्ति वाले जीव भजनीय है ना,
तो
कदाचित इस विभक्ति वालों के साथ एक अल्पतर विभक्ति वाला होता है,
अनेक है।
और कदाचित
अनेक
है। अनेक होते हैं अल्पतर वाले और एक तो अवस्थित वाला तो लिया ही लिया। इस प्रकार इन दोनों भंगों में ध्रुव भंग के मिलाने से तीन भंग होते हैं। इस प्रकार भंग विषय को जानकर उसे अनाहारक मार्गणा पर्यंत ले जाना चाहिए, यानी हर एक मार्गणा में उसको सोचना चाहिए। विशेषार्थ, ओघ से तीनों ही विभक्ति वाले जीव नियम से पाए जाते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। आदेश से नारकियों में भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले तो नियम से पाए जाते हैं और अल्पतर विभक्ति वाले विकल्प से पाए जाते हैं। विकल्प से यानी भजनीय, ऑप्शनल विकल्प नहीं, वो तो राग वाला विकल्प वो नहीं। हाँ, विकल्प से पाए जाने उसी को भजनीय कहा है, यानी पाए जाएंगे या नहीं भी जाएंगे इस तरह से। अतः तीन भंग होते हैं, भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं, यह एक ध्रुव भंग है, तथा दो अध्रुव भंग है। कदाचित भुजगार और अवस्थित विभक्ति वालों के साथ एक अल्पतर विभक्ति वाला जीव पाया जाता है और कदाचित इन दोनों विभक्ति वालों के साथ अल्पतर विभक्ति वाले अनेक जीव पाए जाते हैं। सब नारकियों, सब पंचेन्द्रिय तिर्यंचों, सब मनुष्यों, सामान्य देवों और भवनवासी से लेकर सहस्रार पर्यंत के देवों में तीन भंग होते हैं, किंतु मनुष्य पर्याप्त सांतर मार्गणा है, अतः उसमें सभी पद विकल्प से होते हैं, सभी पद हा? और भंग 26 होते हैं। कदाचित भुजगार विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित भुजगार विभक्ति वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित अल्पतर विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित अल्पतर विभक्ति वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित अवस्थित विभक्ति वाला एक जीव होता है, कदाचित अवस्थित विभक्ति वाले अनेक जीव होते हैं। अब ये तीनों को सेपरेट सेपरेट लिया, पहले में पहले भुजगार वाला एक अनेक, अल्पतर वाला एक अनेक और अवस्थित वाला एक अनेक। अब उनका आपस में कॉम्बिनेशन लेना, भुजगार को फिक्स रखना और अन्य दो को बदलना। अब सातवां पॉइंट, कदाचित भुजगार वाला एक जीव और अल्पतर वाला एक जीव होता है, कदाचित भुजगार वाला एक जीव और अल्पतर वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित भुजगार वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित भुजगार वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। देखो ये जो अभी हमने देखे भंग 4, वो भुजगार को एक रखा, फिर अल्पतर को एक अनेक किया और अवस्थित को एक अनेक किया। अब भुजगार को अनेक करेंगे और उसके साथ उन दोनों के फिर एक अनेक एक अनेक करेंगे। 11वां नंबर देखो, कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव और अल्पतर वाला एक जीव होता है, कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव और अल्पतर वाले अनेक जीव होते हैं, कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है और कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। ये भुजगार के साथ कॉम्बिनेशन लगाया। अब कदाचित अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, यानी अल्पतर वाले को फिक्स रखा और अवस्थित को पहले बदला। कदाचित अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। अब तीनों का कॉम्बिनेशन, कदाचित भुजगार वाला एक जीव, अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है, तीनों को एक एक रखा। कदाचित भुजगार वाला एक जीव, अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं, पहले दो को फिक्स रख के बाद में एक और अनेक किए। कदाचित भुजगार वाला एक जीव, अल्पतर वाले अनेक जीव, अभी सेकंड वाले को एक के बदले अनेक किया और अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित भुजगार वाला एक जीव, अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। अब भुजगार को भी एक एक से अभी अनेक किया, कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है, कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, अल्पतर वाला एक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। या अवस्थित को पलटा, अब बीच वाले को पलटाएंगे। कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाला एक जीव होता है। और 26 नंबर, कदाचित भुजगार वाले अनेक जीव, अल्पतर वाले अनेक जीव और अवस्थित वाले अनेक जीव होते हैं। ये 26 भंग हुए उसके। पहले सिंगल सिंगल को लिया, फिर डबल डबल को लिया, फिर तीनों के कॉम्बिनेशन लिए। आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से पाए जाते हैं, अतः यह एक ध्रुव भंग होता है। अल्पतरों को लेकर दो अध्रुव भंग होते हैं। इस प्रकार तीन भंग होते हैं, यानी अवस्थित वाले नियम से है और अल्पतर वाला भजनीय है, तो उसके एक अनेक वाले तीन भंग होते हैं। यहाँ चार गतियों की अपेक्षा ही भंग विचय का विचार किया है। शेष मार्गणों में इसे ध्यान में रखकर जान लेना चाहिए। अपने पर छोड़ दिया, उनको पता ये करने वाले नहीं है।
बहुत शॉर्टकट।
इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचयानुगम समाप्त हुआ। भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। भागा भागे ने सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है इतना कहेंगे। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मौन्य कर्म की भुजगार विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात्वे भाग है,
अनंत के संख्यात्वे।
हाँ, टोटल अनंत हो गए तो उसके संख्यात्वे भाग है, यानी भुजगार करने वाले बहुत ज्यादा है। अल्पतर विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? तो कहते असंख्यात विभाग है। और अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग है। वो भी अनंत है, वो प्रमाण में बताएंगे, यहाँ तो भागा भाग बता रहे। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत जीव राशियों का कथन करना चाहिए, यानी वो मार्गणाएं जहाँ अनंत राशि है, जहाँ असंख्यात राशि है, उसमें भी ऐसा ही होगा कि भुजगार वाले संख्यात विभाग, अल्पतर वाले असंख्यात विभाग और अवस्थित वाले संख्यात बहुभाग। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में ये संख्यात वाली राशि है ना, भुजगार और अल्पतर स्थिति अल्पतर विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात विभाग है। अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्यात बहुभाग है। वो भी संख्यात बहुभाग देखा था हमने ऊपर। आनंद स्वर्ग से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में अल्पतर विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात विभाग है, क्योंकि वहां असंख्यात होते हैं देव प्रत्येक में। अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के असंख्यात बहुभाग है, कि वहां भुजगार वाले कोई होते ही नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों में अल्पतर विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है? संख्यात वे भाग है। और अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्यात बहुभाग है। इस प्रकार भागा भागानुगम को जानकर अनाहारक मार्गणा पर्यंत ले जाना चाहिए। ओग से भुजगार विभक्ति वाले सब जीवों के संख्यात वे भाग होते हैं, अल्पतर विभक्ति वाले असंख्यात वे भाग होते हैं और अवस्थित विभक्ति वाले संख्यात बहुभाग होते हैं। इसका कारण यह है कि अवस्थित विभक्ति का काल बहुत अधिक है, ये मुख्य कारण उसका। क्योंकि हमने देखा था ना, गुजगार का लगातार काल अंतर्मूर्त और अल्पतर का अभिक्षपणा को छोड़ो तो एक ही समय, और अवस्थित का जो सम्यक दृष्टि जीवों में तो कितने ही लंबा काल हमने देखा था। ये पल्ले वालों में भी हमेशा अवस्थित वाले हो गए, अनतादिक में भी अवस्थित वाले हो गए, जो जो सम्यक दृष्टि है वो भी अवस्थित वाले हो गए। इसलिए उसके काल की अपेक्षा उनकी संख्या ज्यादा कही। तथा भुजगार विभक्ति और अल्पतर विभक्ति का काल यद्यपि योग के समान है, फिर भी अल्पतर विभक्ति का अंतर्मूर्त काल केवल क्रिया विशेष के समय ही होता है। अंतर्मूर्त तो क्षपणा में ही होता है।
अवस्थित पे ये सम्यक दृष्टि को छोड़ दो, ये तो कुछ फर्क पड़ेगा?
हाँ, अवस्थित वाले भोग भूमि वाले सारे अवस्थित है, आनत आदि वाले सारे अवस्थित है, उसमें मिथ्या दृष्टि भी है ना, ग्रेवेक में भी, अनंत में, आरण में, अच्युत में, और वो जीव हमेशा ही पाए जाएंगे और उनका लगातार काल अवस्थित का ही है। क्या कहा? अल्पतर का भी अंतर्मूर्त कहा था, फिर भी वो कब होता है? क्षपणा में होता है, चारित्र मौखिक क्षपणा में,
वो तो बहुत कम
है। इसलिए वो तो बिल्कुल गिने चुने जीव हो गए और वो भी अंतर के द्वारा प्राप्त हो गए। अतः काल समान होने पर भी अल्पतर विभक्ति वाले कम हैं और भुजगार विभक्ति वाले अधिक हैं। अल्पतर कितने? असंख्यात वे भाग है। जिन मार्गणाओं में जीव राशि असंख्यात या अनंत है, उनमें इसी प्रकार भागा भाग जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम का प्रमाण संख्यात है, अतः उनमें संख्यात एक भाग तो भुजगार यानी संख्यात वा भाग और अल्पतर विभक्ति वाले होते हैं और संख्यात बहुभाग अवस्थित विभक्ति वाले होते हैं। अनंत से लेकर अपराजित विमान पर्यंत प्रत्येक में जीव राशि यद्यपि असंख्यात है, किंतु उनमें भुजगार विभक्ति नहीं होती। अतः असंख्यातिक भाग प्रमाण जीव अल्पतर विभक्ति वाले होते हैं, यानी असंख्यातवे भाग प्रमाण, और असंख्यात बहुभाग प्रमाण जीव अवस्थित विभक्ति वाले होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देवों का प्रमाण संख्यात है, अतः उनमें संख्यातिक भाग जीव अल्पतर वाले और संख्यात बहुभाग अवस्थित वाले होते हैं। इस प्रकार भागानुगम समाप्त हुआ। अब परिमाणानुगम, ये अनुगम नंबर 6 है ना, अभी हमने 5 देखा था, 7 हुआ क्या? भागा भाग को, हाँ, छठा भागा भाग था। ये 7 नंबर का भी, तो परिमाणानुगम, अभी हमने भागा कितने भाग प्रमाणे, परंतु उनकी संख्या ख्याल में नहीं आती है, तो ये यहाँ बताएंगे। परिमाणानुगम अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोने की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले द्रव्य प्रमाण से अर्थात गणना की अपेक्षा कितने हैं तो अनंत हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। हाँ, तो उनमें सभी तिरंच आ गए एक इंडिया में, तो उनमें अनंत जीव घटित होंगे। आदेश से नारकियों में सब विभक्ति वाले जीव असंख्यात है, सभी हो। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तिरंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। ये संख्यात संख्या वाली मार्गणाओं को अलग निकाला। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार सिद्धि के देवों में सब विभक्ति वाले संख्यात है। इस प्रकार परिमाणानुगम को जानकर उसे अनाहारक मार्गणा पर्यंत ले जाना चाहिए। केवल वनस्पति कायिक में अनंत कहेंगे, निगोद में अनंत कहेंगे, बाकी तो असंख्यात असंख्यात कहेंगे। अनाहारक मार्गणा पर्यंत, यह के ऊपर रफा रह गया, पर्यंत हुआ ना, पर्यंत ले जाना चाहिए विशेषार्थ। भागा भागानुगम में तो यह बताया गया था अमुक विभक्ति वाले अपनी अपनी जीव राशि के कितने भाग प्रमाण है, अपनी अपनी की बात थी। परिमाणानुगम में उनका परिमाण बताया गया है, वो से तीनों ही विभक्ति वालों का परिमाण अनंत है। आदेश से जिन मार्गणों में जीव राशि असंख्यात है उनमें प्रत्येक विभक्ति वालों का परिमाण असंख्यात है। जिनमें जीव राशि संख्यात है उनमें प्रत्येक विभक्ति वालों का परिमाण संख्यात है, और जिनमें जीव राशि अनंत है उनमें प्रत्येक विभक्ति वालों का परिमाण अनंत है। इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ। ये तो छोटे छोटे हैं सारे ना? अभी 8 नंबर का क्षेत्रानुगम। क्षेत्रानुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मौनीय कर्म की भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? सर्वलोक में, क्योंकि एक इंद्रिय के अनंत तो पड़े हैं सूक्ष्म निगोद सब जगह। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। शेष मार्गणों में मुनि की सब विभक्ति वाले जीव लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। इस प्रकार क्षेत्रानुगम को जानकर उसे अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषण, ओघ से तीनों पद वालों का सर्वलोक क्षेत्र संभव है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में भी घटित कर लेना चाहिए। शेष गतियों में वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, यह देखकर उनमें वह अपने अपने संभव पदों की अपेक्षा उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा पर्यंत शेष मार्गणाओं में क्षेत्र जानना चाहिए। जिस मार्गणा का जो क्षेत्र होगा उसको बताएंगे। जैसे अचक्षु दर्शन वालों में हम कहना है पूरा लोक होगा, इसे समझकर उसको कथन करेंगे। इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ। स्पर्शनानुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ये 9 का ओघ और आदेश। ओघ से मौनीय कर्म की तीनों विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? समस्त लोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में सब विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग का, ये वर्तमान का, और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, मारणांतिक और उपवाद की अपेक्षा। पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान बन गए, यानी लोक का असंख्यात भाग। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी पर्यंत तीनों विभक्तियों का अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और सब मनुष्यों में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वालों का स्पर्शन लोक का असंख्यात भाग और सर्वलोक है। ये मारणांतिक की अपेक्षा सर्वलोक होगा। देवों में भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग का, ये वर्तमान हुआ। 14 भागों में से कुछ कम 8 विहारवत और कुछ कम 9 भाग ये मारणांतिक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। इस प्रकार स्पर्शनानुगम को जानकर उसे अनाहारक मार्गणा पर्यंत ले जाना चाहिए। यहीं रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन भाई।
नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुब्बत्सावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुब्बत्सावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सुब्बत्सावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमायणम नमो वज्रायणम नमो लोय सुभसावणम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमायणम नमो वज्रायणम नमो लोय सुभसावणम नमोरियंताणम।